न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक सब जगह एक ही न्यूज़ ट्रेंड कर रही थी। एक्ट्रेस अनुष्का ओबेरॉय अब इस दुनिया में नहीं रही थी। होटल साच की टेरेस से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत की न्यूज़ बाहर आते ही पुलिस भी एक्टिव हो गई। इस केस में सस्पेक्ट के तौर पर आरफ खुराना का नाम सामने आ रहा था। खुराना इंडस्ट्रीज़ के 15वें फ्लोर पर आरफ अपने केबिन में बैठा था। उसके पास कबीर खड़ा था। दोनों सामने लगी स्क्रीन में यही न्यूज़ देख रहे थे। कबीर ने आरफ की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सर, कबीर ने आरफ की तरफ देखकर कहा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? दादी की तबीयत कैसी है कबीर? आरफ ने पूछा। कबीर को लगा आरफ उससे केस के बारे में बात करेगा। उसके लीक से हटकर कुछ पूछने पर कबीर ने चौंकते हुए कहा, हाँ सर, तुम पिछले 6 साल से मेरे साथ हो, अब तक इतना तो समझ आ गया होगा, मुझे बात रिपीट करना पसंद नहीं है। आरफ ने उसकी तरफ घूर कर देखा। हाँ सर, सॉरी सर, दादी, वो उनके कल सारे टेस्ट फिर से होंगे। डॉक्टर ने कहा है उन्हें एक्स्ट्रा केयर और 24/7 अटेंशन की ज़रूरत है। थोड़ी सी भी टेंशन उनके दिमाग के लिए ठीक है, कबीर ने बताया। घर का वाईफाई कनेक्शन कट करवा दो। केस की पहली सुनवाई में मेरी बेगुनाही का सबूत लेकर खन्ना कोर्ट पहुंच जाना चाहिए, आरव ने उसे सब समझाते हुए कहा। कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब में कहा, ऑफिस की CCTV फुटेज की कॉपी मैंने पहले ही पहुँचा दी है। तो फिर ये मीडिया रिपोर्ट्स, ये मुझे क्यों कल्प्रिट साबित करने पर तुले हैं? आरव ने इरिटेट होकर पूछा। इनके कहने से क्या होता है सर, अगर सबूत पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचते तो अब तक आपका फेवरेट इंस्पेक्टर रोहन उछलता हुआ आ चुका होता, कबीर ने खुश होकर जवाब दिया। वो अक्सर आरव के कहे बिना ही उसकी इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। गुड, ऐसा करो, इन सभी न्यूज़ चैनल्स को डेफेमेशन का नोटिस भिजवाओ। उस रिपोर्टर की क्या रिपोर्ट है? आरव ने पूछा। मैंने अभी भी उसे नीचे कैद कर रखा है, कल रात उसे गिराता तो चीज़ें ज़्यादा उलझ जाती, कबीर ने जवाब दिया। सही किया, आरव ने कहा और वहां से उठकर जाने लगा। सर, आप इस टाइम कहाँ जा रहे हैं? वो मीटिंग, युवानी, कबीर उठकर उसके पीछे आने लगा। तुम मेरी वाइफ नहीं हो कबीर, जो मैं तुम्हें अपने पल पल की रिपोर्ट दूं। युवानी को बोल देना मीटिंग में मेरी प्रेजेंस चाहिए तो 12 घंटे पहले बताया करें, आरव ने बिना मुड़े कहा और सीधा अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला गया। हाँ, जैसे अपनी वाइफ को तो ये सब बताने वाले ही हैं, कबीर ने आंखें घुमाकर कहा। कबीर वहां से आरव का काम संभालने के लिए नीचे के फ्लोर पर चला गया, जबकि आरव इस वक्त कहाँ गया था इस बारे में सिवाय उसके किसी को पता नहीं था। ओबेरॉय मेंशन में गम का माहौल था। अनुष्का की डेड बॉडी के अंतिम दर्शन के लिए बी टाउन से लेकर नाती रिश्तेदारों की लंबी भीड़ थी। मीडिया को अंदर आना अलाउ नहीं था तो सब घर के आगे जमा थे। अनुष्का के अंतिम संस्कार से पहले की सभी जरूरी विधियां की जा रही थीं। वहीं इन सबसे दूर आयुष्का अभी भी हॉस्पिटल में थी। अयान के मना करने के बावजूद वो उसे एक सर्जरी में असिस्ट कर रही थी। उसके दिल का दर्द उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो आयु, ऐसा करने से वो वापस नहीं आ जाएगी, अयान ने बीच सर्जरी में आयु की तरफ देखकर सोचा। डॉक्टर सिद्धि, पेशेंट की फैमिली को बोलो उसकी कंडीशन स्टेबल है, अयान ने सर्जरी खत्म करके कहा। बाहर जाने से पहले उसने तेज आवाज में आयुष्का से कहा, डॉक्टर आयुष्का, कम टू माई केबिन। आयुष्का ने उसकी बात पर हामी और स्टोर रूम में चेंज करने चली गई। अगले 10 मिनट में वो अयान के साथ उसके केबिन में थी। तुम अभी मेरे साथ चल रही हो, आई डोंट वॉन्ट एनी आर्ग्यूमेंट, अयान ने सख्त आवाज में कहा और आयुष्का का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। अयान, छोड़ो मुझे, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, सब हमारी तरफ देख रहे हैं, आयु ने अयान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। हॉस्पिटल में काम करने वाला स्टाफ उन्हीं की तरफ देख रहा था, लेकिन अयान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आयुष्का को जबरदस्ती अपनी गाड़ी के पास लेकर गया और उसे बैठा दिया। वो ड्राइविंग सीट पर था और उसे कहीं ले जा रहा था। गाड़ी रोको अयान, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये, मुझे कहीं नहीं जाना, आयुष्का रोते हुए बोली। अयान काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था, उसने आयुष्का की तरफ देखे बिना कहा, यही सवाल मेरा है, तुम खुद के साथ ये क्यों कर रही हो? तुम अनु से कितना प्यार करती हो ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तुम अच्छे से जानती हो इस वक्त तुम्हारा कहाँ होना ज्यादा जरूरी है। मैं उसे नहीं बचा पाई अयान, आयुष्का ने रोते हुए कहा। तुम्हारी गलती नहीं है, उसे हॉस्पिटल लाया गया तब तक उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका था, चोट सीधे सिर के नाजुक हिस्से पर लगी थी। एक डॉक्टर होकर तुम ऐसे बेवकूफों जैसी बातें कैसे कर सकती हो, अयान ने उसे डांटा। कुछ देर बाद गाड़ी मुंबई के शमशान घाट के आगे रुकी। अयान गाड़ी से बाहर निकला और आयुष्का का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगा। नहीं अयान, प्लीज ये मत करो, मैं उसे ऐसे नहीं देख पाऊंगी, आयुष्का रोने लगी। वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रही थी। अयान ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती उसे अंदर ले गया। अंदर अनुष्का का अंतिम संस्कार बस होने ही वाला था। सब आयुष्का के आने का इंतजार कर रहे थे। रुद्र ने नम आंखों से आयुष्का की तरफ देखा। उसने अनुष्का के शरीर को अग्नि दी। कुछ ही देर में उसका शरीर अग्नि में विलीन हो गया। सब लोग वहां से चले गए, लेकिन आयुष्का अभी भी वहीं थी। तुमने चीटिंग की है, तुम मुझे अकेले छोड़कर चली गई अनु। तुमने अपने हिस्से की हर चीज पहले मुझे दी है, तो जब मरने की बारी आई तो मौत भी पहले मुझे आनी चाहिए थी। आयुष्का वहां नीचे बैठी पागलों की तरह रो रही थी। अयान उसके पास आया और उसे संभालने लगा। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ये किसी के साथ भी हो सकता है। नहीं नो अयान, इट वॉज नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट, उसने उस आरफ खुराना ने मारा है मेरी बहन को, आयुष्का चिल्लाकर बोली। अयान ने कुछ नहीं कहा। आयुष्का रोते हुए बोली, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। अयान, तुम्हें क्या हो गया है आयु? अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचो। अनु अब इस दुनिया से जा चुकी है, तुम्हें इस सच को एक्सेप्ट करना होगा। इसके लिए तुम, मैं या आरफ खुराना, हम में से कोई जिम्मेदार नहीं है, अयान उसे समझाने लगा। अक्सर दूसरों की बर्बादी सोचने वाले खुद बर्बाद हो जाते हैं आयु, मुझे अपनी हर बर्बादी मंजूर है। मेरी जिंदगी तो अनु के साथ ही खत्म हो गई है, पर उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। आयुष्का ने अपने आंसू पोंछे और वहां से उठकर बाहर जाने लगी। ये किस जिद पर अड़ गई हो तुम आयु? आरफ खुराना, तुम नहीं जानती वो कौन है। भगवान न करे कि गलती से भी वो दिन आए जब तुम आरफ की जिंदगी का हिस्सा बनो। वो पहले से बर्बाद है, उसे किसी को खोने का डर नहीं, पर तुम्हारी जिद तुम्हें न तबाह कर दे। अयान के चेहरे पर घबराहट थी। उसके बात करने का लहजा बता रहा था जैसे उसने आरफ का वो चेहरा देखा था जो दुनिया की नजरों में अब तक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के नकाब के पीछे छुपा था। रात के 1 बज रहे थे। मुंबई से दूर महातवाली बीच पर, जहां अरेबियन सी कोस्ट था, वहां एक बड़ी सी शिप आकर रुकी। शिप के बाहर एक बड़ा सा ट्रक था। कुछ लोग उस शिप से बहुत बड़े बड़े बक्से ट्रक के अंदर डाल रहे थे। लोकेशन सेट की हुई है, ड्राइवर भरोसे का तो है ना, माल बहुत कीमती है, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बात सीधे जान पर बनेगी। एक लगभग 50 साल का आदमी किसी लड़के से बात कर रहा था। वो लड़का उम्र से 22 या 23 साल का लग रहा था। उसने जवाब में कहा, उम्र अपन की भले ही कम है, पर इस काम में सालों से लगे हैं, बेईमानी या घपले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ट्रक अपनी जगह पर पहुंच जाएगा भाव। उस आदमी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। लड़के ने उस आदमी से हाथ मिलाया और ट्रक में जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में वो बक्सों वाला ट्रक वहां से रवाना हो गया। इसी के साथ वो आदमी निश्चिंत हो गया और उसी शिप के साथ वहां से चला गया।
उनसे कुछ दूर आरफ कबीर के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। वो शिप से काफी दूर थे, उन्हें ठीक से कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, पर ट्रक के जाते ही उन दोनों के फेस पर स्माइल आ गई। बस अब धमाके का इंतजार है कबीर, देखना इस बार बेचारी को कुछ ज्यादा ही बड़ा नुकसान होगा। बहुत रोएगी वो, मुझे कोसेगी और यही बद्दुआ देगी कि न जाने किस घड़ी में उसने मुझे तकलीफ देने के बारे में सोचा, आरव ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर कबीर ने हामी भरी। उसने कबीर को चलने का इशारा किया। इसी के साथ दोनों वहां से चले गए।